वर्स 63 शुरू करते हैं। यहाँ पे शंकराचार्य बोलते हैं कि जो संसार है, जब उसको ब्रह्म से कंपेयर करें, हम ब्रह्म और संसार के बीच में, तो ब्रह्म विलक्षण है। विलक्षण का क्या मतलब होता है? टैलेंटेड, है ना, अलग, मतलब बहुत टैलेंटेड ही बोल सकते हैं। क्यों? इसमें व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, अनट्रुथ, इनर्ट, फाइनाइट, फुल ऑफ सफरिंग, है ना, झूठ है इसमें, जड़ है, लिमिटेड है, बहुत सारा दुख है। ब्रह्म जो है, ऑन द अदर हैंड, उसको क्या होता है? ब्रह्म क्या है? वो सच है, वो हमेशा चैतन्य है, वो हमेशा आनंदित है, हमेशा है, और वो एब्सोल्यूट है, था है और रहेगा। तो अब ऐसा बोला जा सकता है, वन में रिगार्ड अनट्रुथ टू बी द ऑपोजिट ऑफ ट्रुथ। अब हमें क्या लगता है कि अगर हम बोल रहे हैं अनट्रुथ मतलब झूठ, वो क्या है? सच का ऑपोजिट है, हम ऐसा ही सोचेंगे ना। लेकिन वो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर इफ इट वॉज, देयर वुड बी टू सेपरेट जरिस्डिक्शंस। ये थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझने में आसानी हो जाएगी। टू सेपरेट जरिस्डिक्शंस ऑफ द ट्रुथ एंड अनट्रुथ, ऑफ द इनर्ट एंड द सेंशियंट, ऑफ द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ऑफ द सोरोफुल एंड ब्लिसफुल। बट देर आर नो सेपरेट जरिस्डिक्शंस, द सोवरेनिटी इज ऑफ वन एंड वन ओनली। दैट इज वाई ब्रह्मन इज नॉट रिगार्डेड एज समथिंग सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। द वर्ड विलक्षण अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द ब्रह्म विज़र्व इज द अनट्रू वर्ल्ड। ब्रह्मा इज इनएफेबल, इट के नॉट बी डिस्क्राइब्ड थ्रू वर्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे अब वो दो चीज़ें बता रहे हैं। पहले वो क्या बोल रहे हैं? विलक्षण और ब्रह्म, है ना, कि जो जो संसार है उसमें क्या है? झूठ है, सफरिंग है, लिमिटेड है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, है ना। जबकि जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो वो क्या है? वो हमेशा आनंद है, वो हमेशा है। संसार हमेशा नहीं है, कभी है कभी नहीं है, हमेशा उसमें हर चीज़ बदलती रहती है, उसके अंदर मृत्यु है, एंड है। लेकिन अगर हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं? देखो ये थोड़ा सा बात वैसी है कि यहाँ पे ट्रुथ और अनट्रुथ ऑपोजिट नहीं है। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात यहाँ पे अब खत्म होने वाला है ना आत्मबोध, तो उसके ऊपर अब बता रहे हैं। क्योंकि जो अनट्रुथ है, जो वर्ल्ड है, वो भी ब्रह्म में ही है। यू अंडरस्टैंड? ब्रह्म सब कुछ है, ब्रह्म एब्सोल्यूट है, और वर्ल्ड वैसा सब नहीं है, लेकिन वर्ल्ड भी ब्रह्म का ही पार्ट है, वो उससे अलग नहीं है। एक्चुअली अगर आप पूरे पैराग्राफ को दोबारा पढ़ोगे तो आपको यही बॉटम लाइन यही है कि वो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ओके, देर आर नो सेपरेट जरिस्डिक्शंस। ये एक्चुअली ना समझना बुद्धि से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, और वैसे समझ में आ जाए तो एक ऐसे समझ में आ जाता है एकदम से बात का। फिर वो आगे कहते हैं कि बट पीपल कांट फिगर आउट हाउ द वर्ल्ड कैन बी कॉल्ड अनट्रू, है ना, कि कैसे अनट्रू है। हाउ कैन ऑल दैट इज सो टैंजिबली परसीव्ड बी अ लाई? माई डियर्स, दैट इज वाई द वर्ल्ड इज सेड टू बी इल्यूजरी। इट इज़ नॉट अ लाई बट एन इल्यूजन, है ना। तो पहले उन्होंने बोला कि झूठ है, फिर उन्होंने क्या बोला कि झूठ नहीं है, इल्यूजन है, माया है। और माया का क्या मतलब होता है? माया का मतलब है कि ये जो प्रतीत होता है वो नहीं है। दैट इज ऑल दैट इट मीन्स। इट डजेंट मीन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स दैट वॉट यू आर सीइंग इज नॉट वॉट इट इज, वॉट यू आर परसीविंग इट टू बी इज नॉट वॉट इट इज, दैट इज़ वाई एन इल्यूजन। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल्स किए थे, जब रस्सी में सांप नजर आता है ना, तो सांप इल्यूजन हुआ ना। अब आपको थोड़ा हल्का सा अंधेरा है, आप देख रहे हो, आप कह रहे हो वहाँ पे सांप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको कोई बोलेगा कि नहीं, वहाँ पे सांप नहीं है, वो सांप नहीं है, लेकिन कुछ तो है, सांप नहीं है लेकिन क्या है? वो रस्सी है। वो कैसे पता लगेगा? अगर वहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, अगर आपको कोई जाके दिखा पाएगा हाथ में उठा के, तो आपको दिखाई देगा कि अरे हाँ, ये तो रस्सी है, ये तो सांप था ही नहीं। सो इट इज़ एन इल्यूजन। इट डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ अ लाई। अब इन्होंने आगे वही पैरेलल, जो मिराज का जो मैंने आपको बताया, उन्होंने मिराज से बताया है कि जैसे हमें रेगिस्तान में पानी नज़र आता है लेकिन पानी है नहीं, है रेत ही लेकिन वो पानी नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि संसार नज़र आ रहा है आपको। किससे नज़र आ रहा है? आँखों से नज़र आ रहा है, आपके जो कान है उससे सुनाई दे रहा है, आपको टच हो रहा है और आपको लग रहा है यही रियल है, लेकिन वो जो है वो कुछ और है। कुछ तो है, डेफिनेटली समथिंग इज देयर, बट वॉट इट इज़ दैट इज़ नॉट वॉट यू थिंक इट इज़, दैट इज़ द होल थिंग ओवर हियर। अब इन्होंने आगे वो साइंस का समझाया है जो हम लोगों ने पिछली बार भी, मैंने आप लोगों को उस डॉक्टर वाले केसमिस बताया था ना, उन्होंने भी यही बोला। देखो पहले आपने मैटर है, फिर मॉलिक्यूल्स है, फिर मॉलिक्यूल्स के नीचे जाते हैं तो एटम्स हैं, एटम्स के नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, है ना। फिर प्रोटॉन्स के नीचे हम और बड़ा माइक्रोस्कोप लेते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन फिर वो उन आठ पार्टिकल्स के नीचे भी इवेंचुअली साइंटिस्ट ने क्या बोला कि एक पॉइंट है जब वो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके नीचे क्या है? एम्प्टीनेस है, कुछ है ही नहीं, नथिंग इज़ देयर। इवेंचुअली अगर आप पूरा 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 नीचे जाते जाओ उस चीज़ के अंदर जो आपको मैटर नज़र आ रहा है, वॉट डू यू फाइंड? दैट देर इज़ एम्प्टीनेस। सो इस 252 पेज के जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन अगर आप पढ़ें तो वो बोलते हैं, सो वी कैन से दैट एटम्स एंड सब एटोमिक पार्टिकल्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम एम्प्टीनेस, है ना। इवेंचुअली क्या हुआ? एम्प्टीनेस आई, एंड ऑल दीज पार्टिकल्स एंड सब पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, बट द ह्यूमन बॉडी फॉर्म्ड ऑफ दीज पार्टिकल्स इन मोशन इट सीम्स टू बी स्टेशनरी। सो इज इट रियली स्टेशनरी? हमें अगर सपोज मैं एकदम ऐसे बैठ जाऊँ बिना हिले तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल हिल नहीं रही है ना, ये एकदम जड़ हो गई है। पर अगर मैं बिना हिले भी बैठी रहूँ तो क्या मेरी बॉडी स्टेशनरी है? अगर एक इतना बड़ा माइक्रोस्कोप लगाया जाए तो सब कुछ घूमता हुआ नज़र आएगा इसके अंदर, है कि नहीं? ब्लड घूम रहा है, पानी घूम रहा है, अंदर कुछ सिस्टम्स चल रहे हैं, यहाँ पे एक स्किन का भी एक पार्ट लेंगे, पता नहीं कितने तरह के जीव यहाँ पे घूम रहे होंगे, कितने सारे मुंह के अंदर होंगे, यहाँ होंगे, हमारे पूरे शरीर में तो बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, है ना। एवरीथिंग इज़ मूविंग, एवरीथिंग इज़ देयर। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे आपका शरीर हर एज में डिफरेंट लगता है ना, 5 साल पहले अलग दिखता था, छोटे थे तो अलग दिखता था, तो मतलब बदल रहा है। और आजकल तो आप आगे का भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, अपनी फ़ोटो या आपने अपने बच्चे की फ़ोटो डाली, आगे वो प्रोजेक्ट कर देगा कि 20 साल बाद आप कैसे दिखने वाले हो, है ना। तो चेहरे भी बदलते हैं, शरीर भी बदलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ हो रहे हैं चेंजेस, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहे हैं, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो बॉडी बदल रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि एकदम से रात में नहीं बदल जाती, तो इसलिए हमको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बदलती जा रही है और हम इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं। और मैं मतलब जब मैं छोटी सी थी या 2 फुट की थी तब भी मैंने इसको मैं माना हुआ था, आज मैं 5 फुट 2 इंच की हो गई हूँ तो भी मैं इसको मैं माने हुए हूँ, है ना, पतली थी तो भी मैं थी, मोटी हो गई तो भी मैं हूँ, मैं ही हूँ। वो कह रहे हैं लेकिन ये मैं तो बदलता जा रहा है ना, बॉडी तो बदले जा रही है, इट इज़ फॉल्स। Why is it an illusion? Because it is changing every moment. Then they are explaining, everything has emerged from this nothing and a point comes when everything becomes nothing. But it does seem perceptible. No, it should be, but it does not seem perceptible. Your body, others' bodies, trees, animals, mountains, rivers, it all seems very tangible. It appears as if things were always the same, but is it the same? It is not. है ना? Everything is changing. Your bodies are changing, your houses are changing. हम अपने घर को देखते हैं, हमें रोज़ वही नज़र आता है तो हमें लगता है कि ये वही घर है, लेकिन वो घर में भी हर मोमेंट चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना, एग्जैक्टली वो घर तो नहीं है। ऐसे ही वो बोलते हैं, यू कैन नॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस। आपने पैर डाला गंगा में, बाहर निकाला, अब जब आप दोबारा पैर डालोगे तो वो गंगा का पानी जा चुका है ना, कोई और पानी आ गया, वो तो बह रही है, सब कुछ बदल रहा है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? दैट विच चेंजेस इज कॉल्ड द वर्ल्ड। देखो 253 पेज का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, वो जो बदल रहा है वो ही संसार है. एंड द वर्ल्ड सीम्स टू बी बट इट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट. क्योंकि वो लगातार देर इज़ अ मूवमेंट, सो इट इज़ एन इल्यूजन दैट इट इज़ देयर. वो लग रहा है कि है लेकिन है नहीं, वो बदलता जा रहा है. इट इज़ येट इट इज़ नॉट. जस्ट एज अ मिराज ऑफ वाटर इज सीन इन अ डेजर्ट व्हेन देर इज एक्चुअली ओनली सैंड एवरीवेयर. आई रिपीट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. जस्ट एज अ मिराज ऑफ वाटर इज सीन इन अ डेजर्ट व्हेन देर इज एक्चुअली ओनली सैंड एवरीवेयर, लाइकवाइज द इल्यूजन ऑफ दिस वर्ल्ड इज सीन व्हेन एक्चुअली ओनली ब्रह्मन एग्जिस्ट्स एवरीवेयर. है ना? तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें जहाँ पे ये जो अभी 15 लोग अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ये घर नज़र आ रहे हैं, ये पेड़ नज़र आ रहे हैं, सामान नज़र आ रहा है, हर चीज़ अलग 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 नज़र आ रही है, तो हमें सांप नज़र आ रहा है ना, रस्सी है, तो हमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं, पर क्या है, सबका सब ब्रह्म ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. वो कहते हैं ना, जब आप भगवान को जानते हो, कण कण में भगवान है, ये तो हमने सुना ही है ना, हर जगह भगवान है. अब अगर हम सच में इस बात को समझ जाएं कि जगह जगह भगवान है, तो हमें मंदिर जाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको? अगर हम ये जानकर भी मंदिर में जाके सोच रहे हैं अरे आज मंडे है या जन्माष्टमी है आज या ये है वो है, चलो मंदिर हो आए भगवान के दर्शन कराएं, फिर तो गड़बड़ हो गई, फिर तो मैंने नहीं जाना है ना. पर नहीं जाना है लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे दर्शन करने, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसा नहीं होता, वो भी नहीं करना है ना. समझ जाओ दोनों बातों को. जब तक नहीं जानते जाओ मंदिर, लेकिन जब जान जाओ तो जाने की ज़रूरत नहीं है. क्या ज़रूरत है अगर यहीं पे वो दिख रहा है? आप एक बात बताओ, आप ऐसा बोलोगे कि मुझे ना हवा चाहिए, मुझे थोड़ा सांस लेना है, मैं बॉम्बे होके आती हूँ सांस लेने के लिए, या मैं वहाँ होके आती हूँ, या मैं दूसरे घर होके आती हूँ, बोलोगे, या मैं दूसरे कमरे में होके आती हूँ? कभी बोलते हो ऐसा, सांस लेने के लिए वहां जा रही हूं? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यहीं पे सांस मिल रही है ना, हवा यहीं पे मौजूद है, आपको हवा के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है, लेकिन भगवान के लिए मंदिर में जाना है ना, कि भगवान यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मतलब नहीं जाना कि हर कण कण में है. तो यही है वो, इसका यही देखो, हर जगह यही एक ही मर्म मिलेगा, isn't it? The world does not exist but it is seen. Brahman exists but it is not seen. For remember that which can be seen is not Brahman. इसको ना highlight कर लो ये lines को. The world does not exist but it is seen. Brahman exists but it is not seen. For remember that which can be seen is not Brahman. इसको हम अगर अपने ड्रीम एग्जाम्पल से लें तो एकदम समझ में आ जाता है ना. आप ड्रीम में चले जाओ, जाते ही हो हर रात ड्रीम में जाते हो, वहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है, आप खुद नज़र आ रहे होते हो वहाँ पे. यू आर जस्ट अवेयर बट यू आर नॉट सीइंग योरसेल्फ, इट इज़ जस्ट योर माइंड, इट इज़ योर प्रोजेक्शन, कुछ भी रियल नहीं है वहाँ पे, नथिंग इज़ रियल, बट आपको वो ड्रीम नज़र आ रहा है, लेकिन आप जो हो वो नज़र नहीं आ रहे है ना. और कौन है वो? जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं वो आप ही हो, जो आपको स्वप्न में दीवारें नज़र आ रही हैं वो भी आप हो, जो फूल नज़र आ रहे हैं वो भी आप हो, जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो भी आप हो, आपके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है कि नहीं? Isn't that true? Same thing. Hence never believe anyone who says he or she has seen God. Listen to what they describe patiently and then say, it is not God, my dear, it is just your mind making up images. Good for you though, at least your mind is not obsessed with the world anymore. देखो वो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई सोचता है मुझे भगवान के दर्शन हो गए, ओके, तो आपने क्या क्या किया है? अगेन, भगवान के दर्शन कैसे होंगे? भगवान तो हर चीज़ भगवान ही है, तो उसके दर्शन कैसे होंगे, है ना. तो आपने क्या किया, आपने एक इमेज बनाई. आप देखो जो कृष्ण भक्त हैं उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, जो शिव भक्त हैं उन्हें शिव के दर्शन होते हैं, जो क्राइस्ट फॉलोअर्स हैं उन्हें क्राइस्ट नज़र आते हैं, मोहम्मद वालों को मोहम्मद नज़र आते हैं, है ना. तो अगर हम पोएटिकली और एक सिंपलर लैंग्वेज में बोलें, यू नो, विच इज़ मोर सूटेबल टू अ लेमैन, तो हम बोलते हैं कि आपको जिस फॉर्म में भगवान पसंद है वो वही फॉर्म ले लेते हैं, है ना, क्योंकि भगवान तो निराकार है, तो वो आपको जो रूप पसंद है उसमें वो साकार हो जाता है। लेकिन असली बात यहाँ पे शंकराचार्य इज़ नॉट गोइंग टू मिंस वर्ड्स, है ना, वो आपको सांत्वना नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो शंकराचार्य तो सीधा बोलते हैं कि आपने सिर्फ़ एक इमेज बना ली है भगवान की दिमाग में, आपके माइंड ने कृष्ण को बना लिया और देख लिया और आपको लग रहा है आपको भगवान के दर्शन हो गए। हाँ, अच्छी बात है, इट इज़ बेटर देन बीइंग लॉस्ट इन द वर्ल्ड, बट दैट इज़ नॉट द रियल थिंग। ओके, गॉड इज़ वन, ट्रांसेंडेंटल, बर्थलेस, डेथलेस, बाउंडलेस, सो हाउ कैन यू सी द फॉर्मलेस, है ना। भगवान क्या है, वो तो एक ही है, ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना उसकी कोई लिमिट है, ना उसका कोई आदि अंत है, तो उसके दर्शन कैसे कर सकते हो तुम। अगर तुम अपने आप को ये मन मानते हो तो तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम जीव हो, और अगर तुम अपने आप को जीव मानते हो तो एक ईश्वर होता है, अगर जीव है तो ईश्वर भी है। क्यों? क्योंकि जीव लिमिटेड है और ईश्वर अनलिमिटेड है, ओमनी प्रेजेंट है। मतलब जीव की तो बुद्धि, मन, सीमा, हर चीज़ की सीमा है, लेकिन ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आता है ना, इजी समझ में आता है कि मैं छोटा हूँ, मेरी सीमा है, और एक ईश्वर है जिसकी मैं पूजा कर सकता हूँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पर शंकराचार्य यहाँ पे ना जीव की बात कर रहे हैं, ना ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो हमें ये डिफरेंस यहाँ पे समझना ज़रूरी है। वो सिर्फ ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं मन को हटा दो और माया को हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ ब्रह्म ही बचेगा। जो पूरी माया है वो ईश्वर है, और जो मन है वो जीव है। देखो, मन क्या है, माया का ही एक छोटा सा हिस्सा है, और जीव क्या है, ईश्वर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे ये शरीर है, सपोज हम इस शरीर को अगर ईश्वर मान लें तो मेरा ये जो अंगूठा है ये जीव हो गया, है ना, इस पूरे ईश्वर में ये अंगूठा जीव हो गया। लेकिन अगर मैं अंगूठे को भी हटा दूं और शरीर को भी हटा दूं तो क्या बचा, सिर्फ ब्रह्म। अंगूठा भी ब्रह्म है और शरीर भी ब्रह्म है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ब्रह्म, ईश्वर, जीव। जब तक तुम मन से आइडेंटिफाइड हो तब तक जीव हो, ये वो बता रहे हैं। फिर वो कहती हैं, अब ये सुन के ऐसा भी मत करना कि जाके अपने घर की सारी मूर्तियाँ उठा के फेंक दो, तुमने राम और कृष्ण की फ़ोटो लगाई है उसको उठा के फेंक दो और बोलो अच्छा मैं ही ब्रह्म हूँ तो अपनी फ़ोटो लगा लेता हूँ वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने आगे एक कहानी सुनाई है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था, अन्नम ब्रह्मण, अन्न ब्रह्म है। तो एक इंद्र थे और एक विरोचन थे, वो दोनों लॉर्ड ब्रह्मा की उन्होंने स्टेटमेंट को सुना। तो जो विरोचन थे उन्होंने सोचा कि अन्न क्या क्या मतलब है, खाना, है ना, फूड, और मेरा शरीर इस खाने से बना है तो इसका मतलब मेरा शरीर ही ब्रह्म है। देखो यहाँ पे होता है इंटरप्रिटेशन, है ना, वो जो चीज़ आपको बताई गई, बोली गई, आपकी बुद्धि उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करती है। तो उन्होंने बोला अन्नम ब्रह्मण, तो उन्होंने इसका ये मतलब निकाला कि मेरा शरीर ही ब्रह्म है। और इंद्र ने क्या उसको इंटरप्रेट किया, सेम चीज़ को, सेम सेंटेंस को, कि जो खाना है वो तो पच जाता है, बदल जाता है, इसका मतलब जो मेरा शरीर जो खाने से बना है वो भी बदल जाएगा और वो एक दिन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शरीर तो पैदा होता है, बढ़ता है, उसमें बीमारियां आती हैं और फिर एक दिन मर जाता है, तो ये शरीर ब्रह्म कैसे हो सकता है। देखो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया, उन्होंने उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करके शरीर को ब्रह्म मान लिया और इन्होंने उस चीज़ को क्वेश्चन किया। तो इसलिए जब मन में सवाल उठा तो इंद्र फिर से गए ब्रह्म के पास और उन्होंने बोला अब आप इसका मतलब मुझे ठीक से समझाइए। तो ब्रह्म ने सोचा चलो विरोचन को भी समझाएं, तो देखे विरोचन तो उठ के जा चुके हैं कि मुझे तो सब समझ में आ गया, तो ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो फिर उन्होंने इंद्र को समझाया, फिर उन्होंने बोला देखो जो खाना है, जो अन्न है, वो जड़ है, फूड इज़ इनर्ट, इट इज़ डीकम्पोजेबल, है ना, वो तो पच जाता है, उसका तो बदलाव हो जाता है, और ऐसे ही शरीर है, लेकिन द सब स्ट्रैटम ऑफ दिस मॉर्टल बॉडी, लेकिन इस शरीर, इस अन्न के पीछे जो है वो क्या है, वो चैतन्य है, वो इमॉर्टल है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा है, और वो ही एब्सोल्यूट सेल्फ है। तो जब इंद्र ने ब्रह्म के ये शब्द सुने तो उन्होंने इसके ऊपर और मनन किया और इवेंचुअली उनको भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ये उन्होंने पुराणों में से एक कहानी यहाँ पे बताई है ये समझाने के लिए कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जो हम सुनते हैं उस पर हम कैसे मनन करते हैं, उसका क्या मतलब निकालते हैं। तो ये भी, और ये कौन करता है, ये बुद्धि करती है ना। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि की इम्पोर्टेंस नहीं है, बुद्धि की भी इम्पोर्टेंस है, बस हमें क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट ज्ञान दिया जा रहा है, देखो आत्मबोध इज़ द फाइनल, द लास्ट स्टेप, इसलिए फिर हमें बार बार नीचे आना पड़ता है। तो लास्ट स्टेप में यही है कि बुद्धि की भी वहाँ पर जाके कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, लेकिन जब तक हम लास्ट स्टेप तक नहीं पहुँचते तो बुद्धि का इस्तेमाल करके ही बुद्धि से मुक्ति पाई जाती है। बुद्धि का बिना इस्तेमाल किए बुद्धि से मुक्ति नहीं पा सकते हम, है ना, बुद्धि नहीं गिरा सकते।